ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चरितामृत आदि लीला पांचवा अध्याय श्लोक संख्या चार। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहा द्वितीय देह श्री बलराम। सर्व अवतारे कृष्ण स्वयं भगवान ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। श्रील प्रभुपाद द्वारा कृष्ण स्वयं भगवान है और सारे अवतारों के स्रोत हैं, बलराम जी उनके द्वितीय देह हैं। श्री कृष्ण बोले भगवान है, क्षमा कीजिए, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और सारे अवतारों के स्रोत हैं। श्री बलराम उनके द्वितीय देह हैं। एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय, आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला रसहाय। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। ये दोनों स्वरूप में एक ही हैं, भिन्नता केवल देह में है। श्री बलराम भगवान श्री कृष्ण के पहले विस्तारित रूप हैं और वो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं में सहायता करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा। आज बलराम जयंती है, करीब 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री बलराम इस भूलोक पर प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण की लीला में सहायता देने के लिए। कृष्ण लीलार सहाय, बलराम जी को समझना बहुत ही मुश्किल है लेकिन फिर भी बहुत आवश्यक भी। बलराम स्वयं श्री कृष्ण है, स्वयं भगवान है, दोनों कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है। वैसे भगवान तो एक ही हैं और कृष्ण और बलराम दो अलग अलग भगवान नहीं हैं, लेकिन फिर भी आदि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। एते चांस कलह पुंसह कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और अन्य जो भी हैं वो उनके विस्तारित रूप हैं। पहले श्लोक में यहां कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। अवतार और अवतारी में अंतर होता है। अवतारी मतलब सारे अवतारों के उद्गम, उनके स्रोत, और अन्य जो हैं जो उनसे उत्पन्न होते हैं उनको अवतार कहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अवतारी हैं और अन्य जो भी सारे विष्णु तत्व रूप हैं भगवान के वो सब अवतार हैं, तो अवतारी और अवतार। तो यहां कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं सारे अन्य रूपों के स्रोत हैं और उनका द्वितीय देह तहार द्वितीय देह श्री बलराम। द्वितीय देह का मतलब है कि उनका पहला विस्तारित रूप। भगवान श्री कृष्ण हालांकि एक हैं, फिर भी अपने आप को वो नाना प्रकार के रूपों में विस्तृत करते हैं। भगवान अनंत हैं, उनकी शक्ति अपार है, असीमित है, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप को अनंत रूपों में विस्तारित कर सकते हैं, उनके लिए कोई कठिनाई नहीं। और जब वो अपने आप को इस तरह से विस्तारित करते हैं तो उनमें कोई घटन नहीं होती। ये है भगवान शब्द का मतलब। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्यते। ईशोपनिषद में बताया जाता है कि परम सत्य भगवान हर तरह से पूर्ण है और इन पूर्ण से अन्य कई पूर्ण उत्पन्न होते हैं और इतने सारे पूर्ण उनके देह से उत्पन्न होने के बाद भी उनकी पूर्णता में कमी नहीं होती, घटन नहीं होता। यह है पूर्ण शब्द का मतलब। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने आप को अनंत रूपों में विस्तारित करते हैं, लेकिन फिर भी इन अनंत रूपों में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं दीपाचिरे वहि दशांतरमभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्म यस्ताद्रिगे वहि च विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जिस प्रकार से एक दीप या मोमबत्ती से अन्य दीप या मोमबत्तियां जल सकती हैं और इन सब का प्रकाश एक समान रहता है, लेकिन फिर भी पहले जो आदि मोमबत्ती है वो आदि के आदि ही रहती है, उसी प्रकार से हालांकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, आदि पुरुष हैं, फिर भी उनसे जो उत्पन्न होते हैं अवतार या उनके विस्तारित रूप वो भी भगवान श्री कृष्ण के समान ही हैं, बल्कि उनमें कोई भिन्नता नहीं है। भिन्नता है तो केवल शरीर की, रूप की। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम इनमें कोई अंतर नहीं। अंतर है तो केवल उनके शरीर का। जैसे यहां कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं एक ही स्वरूप दो है, दोनों का स्वरूप एक ही है, लेकिन भिन्नता किस में है? भिन्न मात्र काय, काय मतलब शरीर, शरीर में अंतर है, इतना ही। शरीर में क्या अंतर है? भगवान श्री कृष्ण इनकी कांति, इनका रंग बरसात के मौसम के बादल के बराबर है और बलराम जी का रंग बिल्कुल सफेद है, जैसे कि दूध के फेंड की तरह। और बलराम जी कभी हल धारण किया करते हैं, कभी गदा और कभी दोनों, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के हाथ में हमेशा बांसुरी देखते हैं। इसके अलावा कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है। आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला रसहाय। तो जो कृष्ण के विस्तृत रूप होते हैं उनमें से सर्वप्रथम बलदेव या बलराम जी होते हैं। आचार्य समझाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के दो से दो प्रकार के विस्तारित रूप उत्पन्न होते हैं। एक को कहते हैं कला और दूसरे को कहते हैं विभिन्नांश, विभिन्न अंश। विभिन्न अंश मतलब ये जीवात्मा, अलग अलग तरह के अंश जो कि कण मात्र भगवान के अंश हैं, उनको विभिन्न अंश कहते हैं। हम सब भगवान के विभिन्न अंश हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण असीमित हैं, इसलिए उन्होंने अपने आप को अनंत रूपों में विस्तरित किया है, एको बहुश्याम। इसलिए हम भी श्री कृष्ण के विस्तृत रूप ही हैं, लेकिन हम विभिन्न अंश हैं, क्योंकि हम उनके कण मात्र अंश हैं। और दूसरे हैं जिनको विष्णु तत्व कहते हैं, कला। ये सारे अवतार कहलाते हैं, लेकिन कला में भी दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं स्वांश कला, स्व अंश कला, और दूसरे हैं केवल कला। तो स्व अंश कला मतलब भगवान के निजीय, स्वयं उनके दिव्य शरीर से उत्पन्न होने वाले स्व अंश, वो है बलराम। और अन्य जो भी विस्तृत रूप है भगवान के, जो भी अवतार हैं, कला है वो। कला मतलब अंश के अंश, अर्थात वो सारे बलराम जी से उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब है कि सारे अवतार, सारे जो भी विस्तृत रूप है, सब बलराम जी से आते हैं, और बलराम जी साक्षात श्री कृष्ण से आते हैं। श्री कृष्ण से आए बलराम, बलराम जी से आए संकर्षण, संकर्षण जी से आए वासुदेव, वासुदेव से आए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध से आए प्रद्युम्न, और इन चारों को चतुर्व्यूह कहते हैं। ये आदि चतुर्व्यूह है। फिर से दूसरे संकर्षण आते हैं, और ऐसे पुनः चतुर्व्यूह आता है। फिर नारायण आते हैं, और फिर नारायण से आगे चलकर पुरुष अवतार, ये भौतिक संसार में जो सृष्टि का कारोबार संभालते हैं, जो कि महाविष्णु है, गर्भोदकशाय विष्णु और क्षीरोदकशाय विष्णु। तो ये सारे भगवान के विस्तृत रूप केवल बलराम जी से ही आते हैं। इस प्रकार से बलराम जी आदि काय व्यूह, आदि सबसे पहले विस्तृत रूप भगवान के श्री बलराम जी ही हैं। वैसे बलराम जी स्वयं तो श्री कृष्ण की लीला में सहायता करते ही हैं, कृष्ण लीला रसहाय, लेकिन अपने विस्तृत रूपों के माध्यम से भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा अलग अलग तरह से करते हैं। बलराम जी अपने आप को पांच रूपों में विस्तारित करते हैं। महासंकर्षण, जिसमें कि फिर वो अन्य सारे पुरुष अवतारों के स्रोत होते हैं, और इसके बाद में जो चार रूप हैं, ये चारों रूप भौतिक सृष्टि में वो प्रकट करते हैं। और वो चार रूप हैं महाविष्णु, गर्भोदकशाय विष्णु, क्षीरोदकशाय विष्णु और अनंत शेष। महाविष्णु के त्वचा से अनंत कोटि भौतिक ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं, और हरेक ब्रह्मांड के भीतर गर्भोदक सागर में विश्राम करते हैं गर्भोदक शाही विष्णु। और फिर हरेक ब्रह्मांड के भीतर जो क्षीर सागर है, उसमें निवास करने वाले, रमण करने वाले हैं क्षीरोदक शाही विष्णु। तो ये तीन विष्णु रूप हैं जो कि भौतिक सृष्टि में आते हैं। और फिर चौथे रूप यहां जो है, या पांचवें रूप, वो है अनंत शेष। अनंत शेष भगवान के विशेष रूप है, जो कि स्वयं भगवान की सेवा करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। वो भगवान के शैया बनते हैं। शेष इनको अनंत भी कहा जाता है, क्योंकि अनंत रूप से, अनंत तरह से, अनगिनत तरीकों से भगवान की सेवा वो करते हैं, भगवान की शैया बनते हैं। जब भगवान विष्णु विश्राम करते हैं योग निद्रा में इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर, तो शेष ही उनकी शैया बन जाते हैं। तो अनंत शेष ये भी भगवान बलराम के विस्तृत रूप हैं। और फिर यही अनंत शेष अपने फणों पर इन सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करते हैं। आखिर ये तो बलराम जी के विस्तृत रूप हैं, बलराम। अनंत बल है इनमें, इसलिए इनके लिए, अनंत शेष के लिए एक एक ब्रह्मांड एक सरसों के दाने के बराबर प्रतीत होता है। हमारे लिए तो एक छोटा सा वजन उठाना कितना कठिन हो जाता है, ये पृथ्वी लोक का वजन कितना है, और यहां इस ब्रह्मांड में कितने सारे लोक और ग्रह हैं, लेकिन इन सब का वजन अनंत शेष के लिए केवल एक दाने के बराबर है, इतना है इनका बल। तो अनंत शेष अलग अलग तरह से भगवान की सेवा करते हैं। यहां पर विष्णु के शारीरिक गहने और उनकी जो उपवीत है, उनकी शैया, इन सब तरह से अनंत शेष ही भगवान की सेवा करते हैं। और इन पांच रूपों में से जो पहले चार हैं, महासंकर्षण, गर्भदक्षाय विष्णु, महाविष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, इनका संबंध भगवान की सृष्टि से है। महासंकर्षण वो आध्यात्मिक क्षेत्र में और बाकी तीन विष्णु रूप भौतिक क्षेत्र में। इस प्रकार से भगवान बलराम जो है वो वास्तव में आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के उद्गम है। उनकी वजह से ही ये दोनों सृष्टि होते हैं। वैसे भौतिक सृष्टि, भौतिक जगत की सृष्टि की रचना होती है, इसका पालन पोषण होता है और अंत में विनाश होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में भला जब सब कुछ अमर है, शाश्वत है, तो वहां सृष्टि शब्द का कैसे उपयोग कर सकते हैं? हाँ, ये सही है, वहां तो आध्यात्मिक जगत की सृष्टि की रचना तो नहीं होती, लेकिन फिर भी बलराम जी की इच्छा से ही ये सब चीजें प्रकट हुई हैं। इसलिए बलराम जी को आध्यात्मिक जगत के सृष्टिकर्ता भी कहते हैं। बलराम जी अपने स्वयं निजी रूप में, आदि रूप में श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, वृंदावन में, मथुरा में और द्वारका में। अपने आप को हमेशा श्री कृष्ण के सेवक ही समझते हैं, हालांकि वो भगवान है। ये विशेष बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने आप को अनगिनत रूपों में विस्तारित करते हैं, लेकिन ये सारे अन्य रूप जो हैं वो अपने आप को श्री कृष्ण के सेवक मानते हैं, हालांकि वो भी भगवान के स्तर में होते हैं। चाहे वो बलराम हो और चाहे उनसे उत्पन्न होने वाले सारे जो विस्तृत विष्णु रूप हो, अनंत शेष हो, या सारे जो अवतार हो जो कि बलराम जी से आते हैं, इनमें से प्रत्येक रूप, हालांकि वो स्वयं भगवान है, फिर भी अपने आप को श्री कृष्ण के सेवक ही मानते हैं। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जे जायचे नाचाय ते ताइचे करे नृत्य। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, ईश्वर, परमेश्वर केवल कृष्ण ही है। आर सब भृत्य, भृत्य मतलब दास, सेवक। तो और जो भी रूप है भगवान के, वो भगवान के दास है, उनके सेवक है। जे जायचे नाचाय ते ताइचे करे नृत्य। तो जैसे श्री कृष्ण आदेश देते हैं वैसे वो नाचते हैं, नृत्य करते हैं, वैसे वो काम करते हैं। तो अगर विष्णु तत्व जो स्वयं भगवान के अवतार हैं वो अपने आप को कृष्ण के दास या सेवक मानते हैं, तो फिर हमें कितना और उनका दास मानना चाहिए अपने आप को। तो बलराम जी पांचों ही रसों में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। पहला रस शांत रस। शांत रस में बलराम जी ने अपने आप को विस्तारित किया है। सारा गोलोक वृंदावन, बल्कि सारा वैकुंठ बलराम जी से ही आता है। बलराम जी का विस्तृत रूप है, उनके शक्ति के विकास का एक प्रदर्शन है। और इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सामग्री, आभूषण, उनका उपवीत, ये भी सब बलराम जी से आता है। तो शांत स्वरूप में, शांत रस में इस प्रकार बलराम जी श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। कृष्ण लीला में स्वयं बलराम दास रूप में भी भगवान की सेवा करते हैं। कई बार भगवान के चरण कमलों की मालिश करते हैं, कई बार अपने जंघाओं को वो एक तकिया बनाकर कृष्ण को सुला देते हैं। इसकी चर्चा हम कल परसों करेंगे जब कृष्ण लीला आरंभ हो जाएगी। तो यहाँ पर गौचारण लीला के स्तर तक हम पहुंचे हैं पिछले साल के कथा के हिसाब से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से गौचारण लीला में बलराम जी भी कृष्ण की सेवा करते हैं और कृष्ण भगवान भी बलराम जी की सेवा करते हैं। ये है भक्ति की विशेषता। जो सेवक होते हैं और सेव्य होते हैं, दोनों एक दूसरे को सेवक ही मानते हैं। तो इसलिए हालांकि बलराम जी भगवान हैं, फिर भी उनको सेवक भगवान कहते हैं। सेवक भगवान, क्योंकि सेवा करना बलराम जी पसंद करते हैं। आगे चल के जब वो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र समझते हैं तो फिर वो साख्य रस में सेवा करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण बाल बालों को ले जाते हैं वन में तो बलराम जी साथ में होते हैं और बलराम जी के साथ श्री कृष्ण और ग्वाल बाल नाना प्रकार के सुंदर सुंदर खेल खेलते हैं, लीला रचाते हैं, असुरों का वध करते हैं साथ में। तो इस समय ऐसे लीलाओं में बलराम जी कृष्ण के बराबर के हैं जैसे कि अन्य ग्वाल बाल होते हैं। हालांकि बलराम जी अग्रज हैं, उनसे पहले उन्होंने जन्म लिया है, 1 साल 1 हफ्ते बड़े हैं श्री कृष्ण से, लेकिन फिर भी ऐसे लीलाओं में कभी कभी बलराम बराबर के भी होते हैं और कभी कभार बलराम जी वात्सल्य रस में भी भगवान श्री कृष्ण से संबंध रखते हैं। और ये कैसे? क्योंकि बलराम जी बड़े भाई हैं और बड़े भाई होने के नाते कभी कभी वो छोटे भाई को डांटते भी हैं, जो कि माता पिता का काम होता है या बड़ों का काम होता है। और कभी कभी भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण के लिए उनको आदेश देते हैं, देखो ज्यादा अंदर नहीं जाना, खतरा है, थोड़ा संभल जाना। हालांकि बलराम जी अच्छी तरह से जानते हैं कि श्री कृष्ण कौन है और उनकी शक्ति क्या है। भले अन्य ब्रजवासी भ्रमित हो जाएं, जैसे कि कालिया दमन के समय हुआ था, लेकिन बलराम जी अच्छी तरह से जानते थे कि श्री कृष्ण की शक्ति क्या है। और ब्रह्म विमोहन लीला के समय में भी बलराम समझ तो गए, लेकिन 360 दिन के बाद, 360 दिन भी स्वयं बलराम भी भ्रमित रहे, वो समझ नहीं पाए कि ये जो सारे ग्वाल बाल हैं और गाय के बछड़े हैं ये भी स्वयं कृष्ण के ही विस्तृत रूप हैं, कृष्ण के ऐश्वर्य का प्रदर्शन है। और 5 दिन पहले, 1 साल पूर्ण होने के 5 दिन पहले ही बलराम जी को संशय हुआ कि कुछ गड़बड़ है और तब वो ये निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये सब कृष्ण ही हैं, जो ब्रह्मा जी को मोहित करने के लिए कृष्ण ने ये लीला रचाई है। तो इस प्रकार से बलराम जी भी कभी कभार ऐसे श्री कृष्ण के संरक्षण के लिए उनको डांटते थे, उनको समझाते थे, हालांकि वो जानते थे कि श्री कृष्ण कौन है, वो कभी माया में नहीं पड़ जाते थे। और श्रृंगार रस में या माधुरी रस में बलराम जी श्री कृष्ण की सेवा करते हैं अनंग मंजरी के रूप में, जो कि एक गोपी हैं, सखी हैं, उनके माध्यम से वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा माधुरी रस में करते हैं। तो बलराम जी और कृष्ण हमेशा साथ में रहते हैं, कृष्ण बलराम को अलग नहीं किया जा सकता, खास करके वृंदावन में। वृंदावन में हम देखते हैं कि जैसे जब से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तब से बलराम जी हमेशा उनके साथ में थे। चाहे वो माखन चुराया करते थे तो साथ में, बंदरों को खिलाया करते थे तो साथ में, अगर इधर उधर घूमते फिरते थे, गोपियों के घर में जाकर कुछ और शरारत करते थे, बलराम जी के साथ में। और थोड़े बड़े हुए, जब असुरों का वध करना शुरू किया तब भी बलराम जी साथ में थे। हालांकि बलराम जी बल के प्रतीक हैं, आध्यात्मिक बल के, थोड़े शक्तिशाली थे, इसलिए कब जब वो कृष्ण भगवान वन में गायों को चुराने जाते थे तो माता पिता हमेशा बलराम जी कहते थे कि जरा देखभाल करना कृष्ण का, तुम बड़े भाई हो। बलराम जी थोड़ा शरीर से मजबूत थे, लेकिन श्री कृष्ण बिल्कुल कोमल थे शरीर के। माता यशोदा को हमेशा चिंता रहती थी कि कृष्ण को बहुत खतरा है, लेकिन बलराम जी बड़े भाई होने के नाते वो हमेशा बलराम को कहती थी कि हमेशा नजर रखना कृष्ण पे, देखना कि कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई कुछ हमला ना करे, बहुत असुर आजकल आ रहे हैं वृंदावन में। तो हालांकि बलराम इतने शक्तिशाली हैं, बल के प्रतीक हैं, फिर भी बलराम जी भी समझ लेते हैं कि कृष्ण ही मेरे प्रभु हैं। एक बार बलराम ने सोचा कि मैं भी कृष्ण का वेश पहनूंगा, मैं भी मोर मुकुट पहनूंगा, मैं भी कृष्ण की तरह ही पीतांबर धारण करूंगा, मैं भी कृष्ण की तरह ही बांसुरी बजाऊंगा। ऐसा नहीं है कि केवल कृष्ण बांसुरी बजाते थे, बलराम जी भी बजाया करते थे और अन्य ग्वाल बाल भी बजाया करते थे, क्योंकि ये सब ग्वाल बालों का यूनिफॉर्म था, उनकी वर्दी थी। लेकिन जिस प्रकार श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे वैसे और कोई नहीं बजा सकता था, बलराम जी भी नहीं बजा पाते। तो बलराम जी ने एक बार सोचा कि चलो आज मैं कृष्ण बन जाऊं। तो कृष्ण का वेश धारण किया और वन में चले गए। वन में गए तो उधर घोड़े के रूप में केशी असुर आ गया और ऐसे लात मारा बलराम जी को कि बलराम जी बहुत दूर चले गए। और फिर जब सर चकरा गया, फिर उठे और वापस वृंदावन लौट कर आ गए, जंगल से गोकुल में आ गए और फिर कहने लगे और कभी नहीं, कृष्ण को कृष्ण ही रहने दो, हम बलराम हैं, हम बलराम ही रहेंगे। ये भी एक लीला है बलराम जी की। एक साधारण असुर भले बलराम जी को सता कैसे सकता है, लेकिन फिर भी ऐसे लीलाओं से कृष्ण लीला जो है ज्यादा मधुर हो जाती है, इनका मिठास बढ़ जाता है। और केवल वृंदावन में ही नहीं, बल्कि मथुरा में जाने के बाद भी बलराम जी हमेशा कृष्ण के साथ में रहे। आपको मालूम है कि वृंदावन जब छोड़ के गए कृष्ण, क्यों गए? क्योंकि कंस ने निमंत्रण दिया था उनको कुश्ती की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। और जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर का वध कर दिया, तो बलराम जी ने भी मुष्टिक का वध कर दिया और कूट नाम के पहलवान का, असुर पहलवान का वध किया। और दोनों कृष्ण बलराम ने मिलकर सारे पहलवानों को वहां आसानी से उनको चूर चूर कर दिया। और आगे चल के द्वारका लीला में भी बलराम जी हमेशा श्री कृष्ण के साथ में रहते थे। तो इस तरह से बलराम जी और कृष्ण दोनों एक साथ में रहते हैं। राम कृष्ण सह या कृष्ण राम सह, ऐसे हमेशा भागवत में वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। और राम का नाम या बलराम का नाम कहना भूलते नहीं, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि राम बलराम जी भी कृष्ण लीला में हैं, उनका बहुत प्रमुख स्थान है। तो बलराम जी भी कभी कभार असुरों का वध किया करते थे। कृष्ण भगवान कभी करते थे और कभी बलराम जी। कृष्ण भगवान कभी सोचते थे कि मैंने बहुत असुरों का वध कर दिया, आज चलो बलराम जी को चांस दे देते हैं, तो बलराम जी फिर असुर का वध कर देते थे। ये जो असुर आते थे वृंदावन में, ये एक दैनिक एक टाइम टेबल था। हर रोज कोई ना कोई असुर अवश्य वृंदावन में आता था, क्योंकि कंस तो भेजते रहते थे असुरों को। और दोपहर के भोजन के पहले कृष्ण एक दो असुरों को अवश्य मारा करते थे, मतलब उसके बिना उनको प्रसाद में मजा नहीं आता था। प्रसाद भोजन पचन नहीं होता था, पचता नहीं था। तो ये हर दिन की बात थी, सुबह जब वन में जाते थे एक दो असुरों को मार कर आते थे। श्रीमद् भागवत में तो थोड़े ही असुरों का वर्णन है, सारे असुरों का वर्णन नहीं है, क्योंकि हर दिन कितने दिन भगवान चले गए, कितने साल बीते उन्होंने गाय चराते हुए इस पृथ्वी लोक की लीला में। और हर दिन असुर आया करते थे, एक नहीं कभी ज्यादा भी। इन लीलाओं का आस्वादन भगवान श्री कृष्ण केवल भौतिक संसार में कर सकते हैं, क्योंकि गोलोक वृंदावन में, उनके धाम में, वैकुंठ लोक में, वहां तो कोई असुर नहीं है। तो वहां असुरों का वध भला कैसे कर सकेंगे वो? वहां पर केवल मधुर लीलाएं हैं। हाँ, असुरों का वध करना भी मधुर है, लेकिन अलग दृष्टि से। लेकिन यहां पर जब उनको वीर रस का आस्वादन करना होता है, तो असुरों को भेजते हैं अपने माया शक्ति से, फिर असुरों का वध करते हैं, अपने ग्वाल बाल मित्रों को आनंद देते हैं। और फिर ये जो ग्वाल बाल मित्र हैं, जब वृंदावन में लौटते हैं तो उस दिन का रिपोर्ट भेज देते हैं। पत्रकार होते हैं ये, आके खबर देते हैं सब जगह, अरे आज कृष्ण ने ये किया, आज कृष्ण ने वो किया, आज इस असुर का वध किया और इस तरह से मारा, उसको घुमाया, मारा, पीटा, मुक्का प्रहार किया। तो ग्वाल बाल इन चीजों में ही आनंद लेते थे। तो डेली रिपोर्ट आता था वृंदावन में कि आज कृष्ण ने क्या किया, और उस रिपोर्ट के हिसाब से ही सारी चर्चा वृंदावन में चलती थी। तो कभी कभार कृष्ण सोचते थे, हर रोज मैं असुरों को मार रहा हूं, बलराम जी को भी तो मारना चाहिए, तो बलराम जी को चांस देना चाहिए। तो इसी तरह से भगवान ने योजना बनाई। और ये घटना लीला ऐसे तब हुई जब अघासुर का वध हो चुका था, और उसके बाद में ब्रह्मा जी को भी भगवान ने विमोहित कर दिया था। और सोचने लगे कि चलो अब मेरे ग्वाल बाल मित्रों को एक ऐसे जगह ले जाया जाए जहां पर उनको एक अच्छी दावत दी जाए, ताल वन में, ताल वन में सुंदर ताल वृक्ष हैं, जो कि बहुत ही मीठे हैं, स्वादिष्ट हैं, दिखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो ऐसे वन में ले जाया जाए, वहां पे हम सुंदर लीला करेंगे। लेकिन उन्होंने कुछ बात कही नहीं, बल्कि वो तो सबके हृदय में है, तो उनके ग्वाल बाल मित्रों के हृदय में ही इच्छा हुई कि हम भी तालवन में जाएं। आप जानते हैं कि ब्रजमंडल में 12 वन हैं, उनमें से एक वन है तालवन। तालवन के बारे में बताया जाता है हरिवंश में कि मथुरा के पश्चिम में 2 योजन की दूरी पर है। 1 योजन अर्थात 8 मील। दूसरे शब्दों में यह तालवन मथुरा के पश्चिम दिशा में करीब 16 मील की दूरी पर है। और हरिवंश में यह भी बताया जाता है कि गोवर्धन पर्वत मथुरा के पश्चिम दिशा में 1 योजन की दूरी पर है, अर्थात 8 मील। और यह बताया जाता है कि तालवन ये इन दोनों के बीच में है। इस प्रकार से गोवर्धन और मथुरा के ठीक बीच में ये तालवन है। और तालवन हालांकि वन है, लेकिन वहां पर कोई पत्थर नहीं है, बहुत ही सुंदर भूमि है वहां पर, और बड़ा हरियाली है, सुंदर सुंदर फूल हैं और ताल वृक्ष हैं, जिसमें भरे हुए ताल के फल हैं जो खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट है। तो एक बार वृंदावन में जब श्री कृष्ण गायों को चरा कर ले जा रहे थे, तो उनके मित्र उनके पास में आए। उनके मित्रों में से प्रमुख थे श्रीदामा। श्रीदामा के साथ में थे सुबल, स्तोक कृष्ण इत्यादि। ये सब श्री कृष्ण के पास आए और कहने लगे, अरे कृष्ण, हमें बहुत इच्छा हो रही है ताल फल खाने की, बहुत दिन हो गए। यहां से थोड़ी ही दूरी पर ताल वन है, जिसमें बड़े बड़े ताल वृक्ष हैं, जिनके बड़े बड़े स्वादिष्ट ताल के फूल हैं, फल हैं। हम वो खाना चाहते हैं और हमारे पेट में जो है वो भूखी अग्नि प्रज्वलित रूप से जल रही है, तो अग्नि का शमन करना है तो हमें वो ताल वृक्ष तुम्हें खिलाना होगा। और आज तक हम वहां इसलिए नहीं गए क्योंकि इस ताल वन के भीतर एक भयंकर असुर निवास करता है, जिसने कि एक गधे का रूप धारण किया है। उसका नाम है धेनुकासुर, और ये इतना खतरनाक असुर है, किसी को भी वहां प्रवेश करने नहीं देता है। और इतने सारे मनुष्य भी वहां गए और प्राणी पशु भी वहां जाते हैं, इनको जिंदा खा डालता है ये धेनुकासुर, इतना खतरनाक है। इसलिए जब से धेनुकासुर इस तालवन में निवास कर रहा है, तब से न तो कोई प्राणी पशु पक्षी या मनुष्य जा सकता है, बल्कि पक्षी ऊपर से भी जो उड़ते हैं वो भी घबरा जाते हैं, इसलिए तालवन के ऊपर से भी कोई पक्षियां नहीं जाती हैं। वास्तव में ग्वालबाल चाहते थे कि ये तालवन सारे ब्रजवासियों के लिए और सब प्राणियों के लिए भी फिर से खुल जाए। ऐसा क्यों हो जो कि तालवन जो कि जनसाधारण के लिए पब्लिक के लिए है, ये एक आदमी उसको हड़प करके बैठ जाए और कहे कि ये मेरा है, कोई प्रवेश नहीं कर सकता। और ग्वालबाल भी जानते थे कि कृष्ण ही है एकमात्र जो कि इस असुर का वध कर सकता है। ग्वालबाल मित्र जो हैं, उनको श्री कृष्ण में पूरी श्रद्धा थी। वो जानते थे कि कृष्ण कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने आंखों के सामने देखा था किस प्रकार से श्री कृष्ण ने वत्सासुर का वध किया, जिस असुर ने एक वत्स का रूप धारण किया, आसानी से मार दिया था श्री कृष्ण ने उसको, हालांकि वो बहुत शक्तिशाली और खतरनाक था। और फिर श्री कृष्ण ने बकासुर का वध किया, अघासुर का वध किया। बकासुर एक बक का रूप लेकर आया था, अघासुर मतलब ये असुर जिसने एक विशाल एक सांप का रूप धारण किया था, अजगर का रूप। और भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों को गल लिया था, और भगवान श्री कृष्ण ने अंदर से ही निकलकर उनके शक्ति से सुदर्शन चक्र से उस अजगर का पेट काटकर बाहर आए थे और सारे ग्वाल बालों को बचा दिया था। और उसके बाद में अघासुर का शरीर जो है वहां पर रहा, वैसे ही सूखता हुआ वहां पर वो रह गया, और एक पर्यटन के लिए टूरिस्ट स्पॉट हो गया वो, जहां ब्रजवासी लोग आया करते थे देखने के लिए। तो ग्वालवाल मित्र ये सब जानते थे, उन्होंने देखा था स्वयं कि कृष्ण क्या सब कर सकते हैं। तो इसलिए वो सोचते थे कि ये धेनुकासुर का वध करना है तो केवल कृष्ण और बलराम ही कर सकते हैं। तो कृष्ण का ठीक है, चलो आज बलराम जी को कुछ बारी, आज उनकी बारी है। तो सब धीरे धीरे से चले गए और जैसे ही प्रवेश किया उन्होंने ताल वन में, देखा कि वाकई इतना सुंदर वन है ये। और वहां उन्होंने अपने ग्वालवा मित्रों से कहा खाओ। वहां पे सारे वृक्ष जो है वो झुके हुए थे। क्यों झुके थे? फलों का भार बोझ इतना था, इतने सारे बड़े बड़े फल थे कि इस वजन की वजह से सारे झुके हुए थे पेड़। और मानो ऐसे कि कृष्ण बलराम को भी नमस्कार कर रहे हैं। जैसे कृष्ण बलराम अंदर आए तो उनको नमस्कार करने के लिए ये सारे पेड़ झुक रहे थे। और ये फलों का झुंड इतना था कि लगता था कि ये सारा झुंड जो है वो एक ही फल है। कवि कर्णपुर आनंद वृंदावन चंपू में भी इसका वर्णन करते हैं कि सारे फल इतने पास पास में थे और इतने बड़े थे, इतने स्वादिष्ट लगते थे कि लगता था कि ये सारा झुंड ये बिल्कुल एक ही फल है। इस प्रकार से सारे ग्वाल बाल फल को खाने लगे, बहुत स्वादिष्ट। उनको तो कोई भोग चढ़ाने की विधि की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण ने कहा चलो ये तुम स्वीकार कर लो। तो बड़े अपने जी भर के वो ये सब खाने लगे। उधर बलराम जी केवल एक दो फल खाने से संतुष्ट नहीं हुए, हैं बलराम आखिर, तो उन्होंने क्या किया, सीधे गए, एक झाड़ को पकड़ा, जोर से हिलाने लगे और ऐसे हिलाया कि सारे फल वहां से गिर पड़े। और फिर एक ही नहीं, अलग अलग जगह जाकर सारे वृक्षों को हिलाने लगे। और फिर ये आवाज पत्तों की हिलने की और फिर फलों के नीचे गिरने की और फिर बच्चों की जो चिल्लाहट चिल्लम चिल्ली की आवाज जब सुनाई दिया, तब वहां पर धेनुकासुर आया। धेनुकासुर बड़े क्रोधित होकर वहां आए कि ये कौन मेरे जंगल में, मेरे वन में आया। और तुरंत भाग के आया, तब सब ग्वाल बालों ने देखा इतना भयंकर रूप, बड़ा रूप गधे का, ऐसा गधा जिन्होंने जिसको उन्होंने कभी देखा नहीं था। हमारे साधारण जो रस्ते में धोबी के कपड़े जो उठाने वाले गधों की तरह नहीं थे, वो इतना बड़ा विशाल था, शक्तिशाली, और गरजते हुए ऐसे भयंकर आवाज करते हुए आया और पीछे अपना पीठ दिखाया श्री कृष्ण को और बलराम जी को। और फिर बलराम जी सब कर रहे थे हरकत, तो उन्होंने अपने पीछे के पैर जो है वो उठाए जैसे कि गधा करता है। आप जानते हैं कि गधे के पिछले हिस्से से बहुत होशियार, हमेशा सावधान रहना चाहिए, हमेशा पीछे के पैरों से वो लात मारते हैं पीछे की ओर। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने पैर उठा, धेनुकासुर ने अपने पैर उठाए और जबरदस्त लात मार दी बलराम जी के वक्ष स्थल पर। तो बलराम जी को कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी लीला कर रहे हैं इसलिए उन्होंने ऐसे लीला की कि मानो उसके प्रभाव से वो नीचे पीछे गिर पड़े। फिर बलराम जी ने सोचा अब इसको सबक सिखाना चाहिए। तो बलराम जी ने अपने बाएं हाथ की उंगलियों से केवल उनके वो धेनुकासुर के दो पीछे के पैर पकड़े और पकड़े उठा लिया, हालांकि धेनुकासुर का शरीर इतना बड़ा था, और फिर घुमाया, घुमाने लगे, घुमाया घुमाया, घुमाते रहे और इतनी तेज गति से घुमाया कि घुमाते घुमाते ही धेनुकासुर ने प्राण त्याग दिया। और फिर इतने तेज गति से चल रहा था, ग्वाल बालों को दिखाई नहीं पड़ रहा था कि धेनुकासुर है या क्या है। और फिर बलराम जी ने, जैसे कि बच्चे हमेशा करते हैं, पत्थर को एक धागे से रस्सी से बांधते घुमाते हैं और फिर वो छोड़ देते हैं, उसी प्रकार से बलराम जी ने भी यही लीला की, धेनुकासुर को घुमाया और फिर छोड़ दिया आकाश में। और धेनुकासुर ऊपर उड़ता गया और जब गिरा तो एक ताल वृक्ष ऊपर ही गिर पड़ा। और क्योंकि धेनुकासुर इतना बड़ा था, उसका वजन इतना ज्यादा था, भारी था, इसलिए वो ताल वृक्ष झुक कर गिर गया। और जैसे ही वो गिर गया तो उसके बाजू में जो वृक्ष था वो भी हिल गया, वो भी गिर गया। इस प्रकार से कई वृक्ष नीचे गिर पड़े, उत्पात हो गया सारे ताल वन में, और धेनुकासुर के नीचे गिर पड़ा। जब धेनुकासुर के मित्रों ने देखा कि ये क्या हो गया है, ये सारे ग्वाल बालों ने आकर हमारे मित्र को, हमारे नेता को खत्म कर दिया है, तो बहुत क्रोधित हो गए। ये अन्य असुर जो थे धेनुकासुर के मित्र, इन्होंने भी गधे के रूप धारण किए थे, तो ये भी सब आए और लात मारने के लिए बलराम जी और कृष्ण के साथ सामने आए। और कृष्ण बलराम दोनों ने सोचा चलो अब मजा किया जाए, तो दोनों ने ठीक उसी तरह से सारे इन गधों के, असुरों के पीछे के पैर पकड़े, उनको घुमाया और फिर से जैसे धेनुकासुर को फेंक दिया था बलराम जी ने, वैसे इन सारे असुरों को फेंकने लगे। इनका रंग नीला था और जब ये सारे अलग अलग ताल वृक्ष के ऊपर में बैठ के ऊपर फेंक दिए गए, ऊपर सब निवास करने लगे मृत अवस्था में, तो ऐसे लगने लगा जैसे कि ताल वन में ऐसे नीले रंग के बादल छाए हुए हैं। और क्योंकि वध कर दिया था कृष्ण और बलराम ने उनका, तो खून, लाल रंग का खून भी उनके शरीर पे आ गया था, तो ऐसे लग रहा था कि कहीं नीले बादल और बीच बीच में बाले बादल, लाल रंग के बादल सब जगह छाए हुए हैं तालवन में। और तालवन के फिर वृक्षों का रंग अलग, फलों का रंग अलग, बहुत ही एक मनोहर दृश्य था। वैसे भगवान श्री कृष्ण जो भी कार्य करते हैं वो मनोहर ही होता है, सुंदर दृश्य लगता है। वैसे जब हम यहां देखते हैं कि किसी की हत्या हुई है तो बहुत गंदा लगता, अच्छा नहीं लगता है, मधुर नहीं लगता। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण कोई भी कार्य करते हैं, भले असुरों का वध क्यों ना हो, लेकिन वो दृश्य बड़ा सुंदर और मनोहर होता है। तो इस प्रकार से सारे ग्वाल बाल वाह वाह करने लगे कृष्ण बलराम की, वाह कृष्ण बलराम बहुत अच्छा किया। ऊपर से स्वर्ग लोक में से सो जो देवी देवता भी देख रहे थे वो भी पुष्पों की वर्षा करने लगे। और इस तरह से सारे देवी देवता भी ऊपर से दुंदुभी और अन्य वाद्य बजाने लगे। हर बार जब कृष्ण किसी असुर का वध करते थे तो देवी देवता हमेशा ऐसे ही किया करते थे, क्योंकि कृष्ण लीला ये इतनी मधुर है और ये गोलोक वृंदावन की लीला जब स्वयं यहां भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे, ये इतनी दुर्लभ बात थी कि देवी देवता इन लीलाओं का दर्शन करने का अवसर खोना नहीं चाहते थे। इसलिए हमेशा गोकुल के ऊपर बादलों के पीछे देवी देवता छुपा रहा कर, छुप कर इन सारे लीलाओं को देखते थे और विस्मित हो, कभी कभी भ्रमित भी हो जाते थे, जैसे कि ब्रह्मा जी होते थे। ब्रह्मा जी रोज नहीं आया करते थे, एक आध बार आया करते थे, लेकिन एक आध बार जब आए, जब उन्होंने हल्ला गुल्ला देखा कि क्या हो रहा है, ब्रह्मलोक तक उन्होंने सुना कि सारे देव देवताएं जब वाद्य बजा रहे हैं, अप्सरागण नृत्य कर रहे हैं और जो महरलोक जनलोक लोग सुंदर वेदों की स्तुतियां कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी सुनने को आए थे उस समय कि क्या चल रहा है, क्यों हल्ला गुल्ला हो रहा है। जैसे हमारे घर के बाहर सड़क में जब कोई हल्ला गुल्ला चलता हम जाके देखते हैं क्या हो रहा है, तो ब्रह्मा जी के लिए पृथ्वी लोक भी घर के बाहर के समान है ना। हालांकि ब्रह्मा लोक तो ऊपर है और पृथ्वी लोक यहाँ है, लेकिन उनको यहाँ मित्रों के साथ में बैठ कर वो प्रसाद का सेवन कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी उस समय उनका सर चकरा गया, भ्रमित हो गए कि ये भले भगवान हो सकते हैं क्या। तो कृष्ण के परीक्षा करना चाहते थे और वैसे हृदय में जानते थे कि ये भगवान है, भगवान की लीला है, तो भगवान की लीला के माधुर्य को और बढ़ाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सारे ग्वाल बालों को चोरी कर दिया और आगे चल के ब्रह्म विमोहन लीला हुई। तो ब्रह्मा जी तो स्वयं रोज नहीं आया करते थे, लेकिन अन्य देवी देवता अवश्य आया करते थे। और क्योंकि हर रोज कृष्ण असुरों का वध करते थे, तो हर बार जब ऐसे होता था तो देवी देवताएं सुंदर वाद्य बजाते थे और पुष्पों की वर्षा करते थे पीछे से, और वहां से साधु साधु वाह वाह कार की आवाज सुनाई पड़ती थी। और हमेशा ग्वालबाल लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे कि क्या हो रहा है, हमारे कृष्ण कितने बड़े आदमी हैं कि ऊपर से सब देवी देवता वाहवाकार करने आ जाते हैं। लेकिन इन बातों को ब्रजवासी विश्वास नहीं करते थे, ये छोटे बच्चे बक रहे हैं, क्या देवी देवताओं की बात करते, भले हमारी सब बच्चों के बीच में देवी देवता कभी आ सकते। जब तालवन इन सारे असुरों से मुक्त हो गया तो अभी वृंदावन के सारे पशु प्राणी मनुष्य वहां आ सके।
इतने सारे फल नीचे गिरे हुए थे और एक दूसरे के ऊपर गिरने की वजह से और इतने ऊंचाई से कभी कभी नीचे जमीन पे गिरने की वजह से उनके अंदर जो रस था वो भी बाहर निकल रहा था, इसलिए तालवन की जमीन पर भी बहुत सारा रस पड़ा हुआ था। तो हालांकि ये 5 साल के 6 साल के बालक ही थे, लेकिन फिर भी ये सारे मर्यादा जानते थे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने देखा कि इस ताल वृक्षों के ऊपर यहाँ पे असुरों का खून है, तो जहां खून स्पर्श करता है वो चीज अशुद्ध हो जाती है, इसलिए उन फलों को उन्होंने छुआ नहीं। ये भी सभ्य समाज में नियम होता है कि शरीर के भीतर से जो भी कुछ आता है वो अशुद्ध माना जाता है, चाहे वो पसीना हो, यहां तक कि हमारा बाल भी क्यों ना हो। इसलिए हमारे आंसू हो, कुछ भी हो, शरीर के अंदर से जो भी कुछ आता है अशुद्ध माना जाता है, लेकिन फिर भी इस शरीर को हम कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, कितना सुंदर मानते हैं, कितना मूल्यवान मानते हैं। इसलिए बताया जाता है कि जब हम प्रसाद बनाते हैं भगवान के लिए रसोई घर में, तो खास करके माताओं को आवश्यक है कि अपना सर ढकें, अपने बाल को ढकें, ताकि भोजन में बाल न गिरे। इसलिए हमेशा यहाँ पर हमारे भगवान के रसोई घर में यह नियम रहता है कि बाल दिखने भी नहीं चाहिए, ढकने चाहिए, ताकि गिरने की संभावना नहीं है। वैसे ब्रह्मचारी लोगों को इसकी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन फिर भी माताओं को तो तकलीफ है इसके बारे में। तो ये भी जानते थे, छोटे छोटे ग्वाल बाल थे, 5 साल के भी नहीं थे, लेकिन ये सारे नियमों को विधि विधानों को जानते थे। कोई पाठशाला में नहीं गए थे, लेकिन इतने छोटे होते हुए भी, गांव में रहते हुए भी वो ज्यादा सुसंस्कृत थे। लेकिन आजकल इतने बड़े शहर में रहने के बाद भी यहां शहर के लोग इन सब चीजों को नहीं जानते हैं। सुबह उठते हैं, स्नान किए बगैर बेड टी उनको चाहिए, छोटा हाजरी, और उसके बाद में स्नान आराम से करेंगे, उसके पहले खाएंगे पिएंगे सब कुछ कार्य करेंगे, कभी स्नान किए बगैर ही चले जाएंगे। और क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है इसका कोई विवेक नहीं, कब खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए, किसी भी टाइम खा लिया, कुछ भी खा लिया, कैसे भी खा लिया, कहीं भी खा लिया। हर एक वस्तु के लिए हमारे जीवन में विधि विधान होते हैं। बाहर सड़क में जाते जाते नहीं खाना चाहिए, खड़े होते समय खाना पीना नहीं चाहिए, बैठकर पीना चाहिए, खाना चाहिए। अगर सबके सामने खाएं तो उनको भी अर्पण करना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी प्रसाद भोजन ग्रहण करना चाहिए, वो भी भगवान को अर्पण करके, मुंह धोए बगैर खाना नहीं चाहिए, मुंह खाने के बाद में मुंह कितनी बार धोना चाहिए, कैसे धोना चाहिए, बाएं हाथ से नहीं खाना चाहिए, कितनी चीजें हैं। लेकिन ये सब छोटे छोटे ग्वाल बाल भी इन बातों को जानते थे, इसलिए उन्होंने देखा कि जहां खून का स्पर्श हुआ है तो हम वहां उन चीजों को खा नहीं सकते, तो उन्होंने छोड़ दिए और केवल सुंदर दृश्य को देखकर वो संतुष्ट हो गए। हालांकि ग्वाल बाल जब वहां आए थे तो ताल वृक्षों के लोभ से, उनका स्वाद लेने के लोभ से वहां आए थे, लेकिन अब ये सुंदर दृश्य देखा काम हो गया, धेनु का सुर और उनके साथियों का वध हो गया, ग्वाल बाल संतुष्ट हो गए। आचार्य बताते हैं कि वास्तव में ये ताल वृक्ष को खाने वाले केवल वहां के जो पुलिंद आदि जो नीच जाति के लोग थे वो आके खाते थे, तो ग्वाल बाल फिर जाके वहां खाए नहीं। कृष्ण के संग में ही वो पूरी तरह से संतुष्ट थे, और इस प्रकार से कृष्ण, बलराम, ग्वाल बाल सहित वापस अपने गांव में वृंदावन में लौट कर आए, और फिर से नया रिपोर्ट आ गया वृंदावन में, धेनु का सुर का वध ऐसे किया बलराम जी ने, कृष्ण ने तालवन को मुक्त कर दिया इन असुरों से, और फिर वहां अगले दिन सारी चर्चा चलती रही ब्रज में। तो ऐसे लीला भगवान श्री कृष्ण और बलराम साथ में किया करते थे। वृंदावन की लीला तो बड़ी मधुर है, और वृंदावन छोड़कर जब कृष्ण मथुरा में गए तो बलराम जी साथ में आए, फिर द्वारका, और ऐसे कई साल बीत गए। इसके बाद कई साल बीतने के बाद जब श्री कृष्ण वृंदावन लौटकर गए नहीं थे, बलराम जी के मन में विचार आया था कि इतने साल हो गए हम वृंदावन छोड़कर आए हैं, हम वापस गए नहीं। हाँ, कृष्ण ने उद्धव को अवश्य भेजा है एक बार वृंदावन में, लेकिन न तो कृष्ण चले गए हैं न मैं गया हूं। अब वहां के ब्रजवासी जो हैं हमसे इतना प्रेम करते थे, बल्कि अपने उनके प्राण से ज्यादा प्रेम करते थे, और वो कितने दुखी हैं कृष्ण के विरह में। हमारे माता, हमारे पिता, हमारे मित्र सब वहां पर हैं। तो बलराम ने सोचा कि मुझे वहां जाना चाहिए वृंदावन में, और कृष्ण से अनुमति ली। कृष्ण से कहा ठीक है। वैष्णव आचार्य समझाते हैं कि शायद श्री कृष्ण के मन में भी ये इच्छा थी कि वो भी चले जाए, लेकिन वहां के यदुकुल के लोगों ने सोचा कि अगर कृष्ण वृंदावन वापस चले जाएगा तो वापस कभी नहीं आएगा, क्योंकि ब्रजवासियों का प्रेम इतना गाढ़ था, इतना मधुर, इतना तीव्र कि उनके सामने द्वारका के रानियां भी खड़ी नहीं हो सकती थी, और खास करके वृंदावन के गोपियों का प्रेम। इसलिए बताया जाता है कि भक्ति के जो सबसे ऊंचा सर्वोच्च शिखर ये गोपियों ने प्राप्त कर लिया था। रम्या काचित उपासना व्रज वधु वर्गेन वा कल्पिता, आराध्य भगवान व्रजेश तनयस्तद् धाम वृंदावनम। तो आराध्य भगवान हमारे कौन है? श्री कृष्ण। कौन से श्री कृष्ण? द्वारका के, मथुरा के नहीं, वृंदावन के। आराध्य भगवान व्रजेश तनय। कौन से श्री कृष्ण? व्रज के ईश, व्रज के राजा, नंद के तनय, उनके पुत्र नंद नंदन यशोदा नंदन श्री कृष्ण, वृंदावन वाले, बांसुरी वाले श्याम सुंदर कृष्ण की बात है, वो हमारे आराध्य देव हैं। तद धाम वृंदावनम, रम्या काचित उपासना व्रज वधु। व्रज वधु जो गोपियों ने की हुई जो भक्ति है वही सबसे ऊंची भक्ति है। इसलिए ये द्वारका के निवासी भी अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी तरह से भक्ति उनकी तरह कोई नहीं कर सकता, और अगर श्री कृष्ण वहां चले जाए तो फिर यहां लौट के आने की संभावना नहीं है। इसलिए वहां के यदुकुल के निवासियों ने, यदुकुल के सदस्यों ने कृष्ण को बांध के रखा, छोड़ा नहीं वृंदावन जाने के लिए, और बलराम जी अकेले वहां चले गए। जब बलराम जी वहां गए तो सारे ब्रजवासी बहुत आनंद से भाव विभोर हो गए। माता यशोदा और नंद महाराज ने अपने गोदी में बिठाया और बलराम जी का चुम्बन किया। हालांकि बलराम जी भी काफी बड़े हो गए थे, लेकिन फिर भी माता पिता के लिए बच्चे बच्चे ही रहते हैं, कितने भी बड़े क्यों ना हो। और फिर बलराम जी से पूछ रहे थे कि तुम और तुम्हारे छोटे भाई कृष्ण हमेशा हमारी रक्षा करना। एक दृष्टि से वात्सल्य भाव, मातृभाव, पितृभाव है, लेकिन दूसरी ओर से उनको क्या बोल रहे हैं आलिंगन करते हुए बलराम जी को, कि तुम और तुम्हारे छोटे भाई कृष्ण हमेशा हमारी रक्षा करना। क्योंकि वो जानते थे कि कृष्ण और बलराम बच्चे तो हैं, लेकिन इनमें भगवान की कृपा से कोई विशेष शक्ति है। जब वो वृंदावन में थे तो हमारी रक्षा कितनी बार की, हर रोज जब भी हमें कष्ट होता था, हम त्राही त्राही मचाते थे, तो ये कृष्ण और बलराम आके हमारी रक्षा करते थे। कृष्ण हमारी रक्षा करते थे और बलराम कृष्ण की रक्षा करते थे, तो बलराम कितना शक्तिशाली होगा। तो इसलिए माता यशोदा नंद महाराज बलराम से ऐसे कहने लगे। फिर इसके बाद में और जो भी ब्रजवासी आए उनको यथा उचित वैसे उन्होंने उनसे बातचीत की, उनसे आलिंगन किया। जो बलराम जी से बड़े थे उम्र में, बलराम जी ने उनको नमस्कार किया, उनके पैर छुए, और जो उनके हम उम्र के थे उनसे आलिंगन किया, और जो बलराम जी से कम उम्र के थे गोप इत्यादि उन्होंने आके बलराम जी के चरणों में नमस्कार किया। तो ये मर्यादा होती है, आजकल मर्यादा रही नहीं, आजकल हाय हेलो का जमाना आ गया है, कोई किसी को सम्मान नहीं देता, केवल हर एक व्यक्ति अपने आप के लिए सम्मान चाहता है। एक जमाना था थोड़े थोड़े साल पहले की बात भी है कि छोटे जेठो बड़ों का सम्मान करते थे, किस प्रकार से बात करना चाहिए ये एक मर्यादा हुआ करती थी। तो भगवान श्री कृष्ण अपने लीलाओं के माध्यम से भी ये वैदिक संस्कृति को हमें समझाते हैं, किस प्रकार से हमें आपस में परस्पर संबंध रखने चाहिए, कैसे आपस में प्रेम से हमें एक दूसरे के प्रति व्यवहार करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। तो जैसे जैसे उचित था वैसे वैसे बलराम जी ने सबके साथ में बातचीत की। फिर अंत में गोपियां आईं, थोड़े दूर में रहीं वहां, और गोपियां बलराम जी को पूछने लगी कि क्या कृष्ण वहां खुश है ना, द्वारका के पटरानियों के संग में खुश है ना। क्योंकि गोपियों को हृदय में हमेशा ये बात चुभती थी कि श्री कृष्ण यहाँ हमें छोड़कर चले गए और ऐश्वर्य से बड़े बड़े रानियों के संग में वहां रमण कर रहे हैं। हम तो सादे गांव के गोपियां हैं, हमारे अंदर तो वो सब चीजें नहीं है। वो आज सही ढंग से बोलना, सही ढंग से बात करना, सही ढंग से अपने आप को सजाना, ये बड़े ऊंचे ऊंचे कुटुंब के सब रानियां हैं, इनको सब मालूम है कैसे क्या करना है। तो भी गोपियां बोलने लगी बलराम से, अवश्य उनके आंखों में आंखें मिलाकर वो कृष्ण वहां बैठे होंगे। क्या वो कभी यहाँ ब्रजवासियों को याद करते हैं? क्या कभी अपने माता पिता को याद करते हैं? क्या वो याद करते हैं कि हम लोगों ने कितनी सेवा की उनके लिए? गोपियां श्री कृष्ण के लिए क्या सेवा करती थी? फूलों की माला बनाया करती थी, और जब वन में जाया करते थे तो फूलों से उनके लिए शैया बनाया करते थे, उनके लिए कभी कभी झूला सजाया करते थे, जैसे यहाँ झूला सजाया हुआ है फूलों से और जिसमें राधा कृष्ण विराजे हैं। तो उसी प्रकार से झूलन यात्रा राधा कृष्ण के लिए गोपियां भी किया करती थी ब्रज में। और राधा कृष्ण की लीला में माधुर्य गोपियों की सेवा से बढ़ जाता था। अगर गोपियां न होती साथ में, केवल अगर राधा कृष्ण रहते, तो उनकी लीला में उतनी मिठास नहीं होती। इसलिए गोपियां अलग अलग तरह के सेवा करते थे भगवान श्री कृष्ण के, और इसमें उनको इतना आनंद आता था और राधा कृष्ण को भी इतना आनंद आता था कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से बहुत ही निकट की सेवा इन गोपियों ने किए थे। तो कहने लगे कि हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि कृष्ण तो यहां से चले गए और लौट कर नहीं आए, और हम अभी तक जीवित हैं। संसार के जो पत्नियां रहती हैं, प्रेमिकाएं रहती हैं, जब उनके प्रेमी चले जाते हैं तो प्राण त्याग कर वो मर जाते हैं, लेकिन हम ना तो मरे हुए हैं ना हम जीवित हैं, ना इधर के ना उधर के। और ये श्री कृष्ण ऐसे हैं, कभी विश्वास नहीं करना चाहिए इनके ऊपर। हमने सब कुछ इनके लिए त्याग दिया, हमारे माता पिता पति, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन सगे संबंधी, सबको त्याग दिया। इन सबको त्यागना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना होते हुए भी हम सबको त्याग दिया केवल इस कृष्ण के लिए, और कृष्ण ने हमको धोखा दिया, चले गए। अब परवाह नहीं कर रहे हैं कि हमारा क्या हो रहा है। हमने जब त्याग दिया तो हमें वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन कृष्ण भगवान ने सोचा नहीं कि हमारा क्या होगा, यूं ही चले गए उन गांव की महिलाओं के लिए, हमें यहां छोड़कर चले गए। अब न जाने क्यों ये लोग इनके ऊपर विश्वास करते हैं, ऐसे ही धोखा उनके साथ भी होगा, अवश्य होगा। और फिर आपस में गोपियां बात करने लगे बलराम जी के सामने, बोलने लगे न जाने क्यों ये लोग ऐसे विश्वास करते हैं। और दूसरी गोपी कहने लगी, हाँ हो सकता है कि कृष्ण बोलने में इतने चतुर हैं, इनकी वाक सिद्धि है, जब बोलते हैं तो सुनने वाले का मन ऐसे हर लेते हैं, ऐसे प्रभावित करते हैं कि वो सामने वाला आदमी सब कुछ भूल जाता है। तो खैर हमें क्या लेना देना इनसे, उनको करने दो जो करना है, कितने भी रानियों के साथ में रमण करने दो, हमें क्या लेना देना। बाहरी दृष्टि से ऐसे ही रोट कर बोल रही हैं। तो बलराम जी समझ गए कि ये बहुत दुखी हैं। फिर गोपियां वहां रोने लगी। फिर बलराम जी ने उनको सांत्वना देने के लिए भगवान श्री कृष्ण के संदेश को बताया। जैसे कि जब उद्धव वृंदावन में आए थे तो उस समय उद्धव ने भी भगवान श्री कृष्ण का संदेश भेजा था। संदेश कई प्रकार के थे, उसमें कई भाग थे। एक था
जैसे कि वो प्रचार कर रहे हैं, उनको थोड़ा दर्शन शास्त्र सुना रहे हैं, दूसरा कभी सांत्वना देने के लिए थोड़ा उपदेश दे रहे हैं, और तीसरी बात अपने शक्ति का प्रदर्शन या वर्णन कर रहे हैं, चौथे गोपियों का या ब्रजवासियों का गुणगान कर रहे हैं। तो उनके संदेश में कई भाग हुआ करते थे। तो जब उद्धव ने दर्शन शास्त्र कहना शुरू कर दिया था कृष्ण के प्रतिनिधित्व करते हुए, तो गोपियों का बहुत हो गया, हमें दर्शन शास्त्र नहीं सुनना है, दर्शन शास्त्र से हमें क्या लेना देना है, हम तो गांव के सब महिलाएं हैं। क्योंकि कृष्ण प्रेम के स्तर में दर्शन का क्या मतलब, हम तो कृष्ण प्रेम के स्तर में नहीं है, हमें तो दर्शन शास्त्र बहुत पढ़ने चाहिए आसानी से, और बहुत ही हृदय से रोज इनका अध्ययन करना चाहिए, श्रवण कीर्तन करना चाहिए। तो खैर बलराम जी ने भी थोड़ा कुछ जब कृष्ण का संदेश कहा तो गोपियां ध्यान से सुनने लगी, उनका हृदय थोड़ा बहुत शांत हो गया। और फिर माघ और माधव के दो महीने में वहां बलराम